साथियों नमस्कार, आप सुन रहे मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर आज मोबाइल वाणी के मंच पर हमारे साथ रूबरू होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित है मुलताई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम जी। नमस्कार डॉक्टर साहब।
जी नमस्कार
डॉक्टर साहब। जैसा कि अभी हाल ही में 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जो भाषण उन्होंने दिया, देश को अपना संबोधन किया, उससे आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे?
देखिए, उनका भाषण चाहे लाल किले से हो, चाहे संसद में हो, या विदेश में हो, या किसी भी कार्यक्रम में, उनका हर भाषण चुनावी भाषण होता है। वो बहुत सारे दावे करते हैं, उसमें अधिकतर दावे झूठ होते हैं। और पहले तो उन्होंने वो 50 साल आगे की बात करते थे, अब तो 1000 साल की बात वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने जो दावा किया कि अगली बार भी मैं इसी जो है लाल किले से भाषण दूंगा और ये बातें मैं करूंगा, तो मुझे लगता है कि इससे शंका पैदा होती है, क्योंकि कोई आदमी इच्छा तो रख सकता है लेकिन दावा नहीं कर सकता, क्योंकि लोकतंत्र में जो अधिकार है वो तो जनता को है। जनता ने अगर अटल जी को हराया, इंदिरा जी को हराया, तो जनता किसी को भी हरा सकती है, किसी को भी जिता सकती है। और तब फिर ऐसे समय में एक सांसद बोलता है, तेलंगाना का भारतीय जनता पार्टी का सांसद, कि कहीं भी वोट डालो जीतेंगे तो मोदी जी ही। तो अब ये सीधा सीधा सा मामला ईवीएम का आ जाता है। लोगों को ईवीएम के प्रति पहले से ही संदेह है। लोग ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिन्होंने ईवीएम जिन्होंने बनाई, वो अगर जो है इलेक्ट्रोल उससे करते हैं, है ना, तो बैलेट से करते हैं, तो फिर भारत में क्यों नहीं होना चाहिए। हमारा कहना यह है कि भाई आप कम से कम वीवीपीएटी जो पैड है, मतलब जो पर्ची होती है, उसकी गिनती शुरू करो। 100% जो है आप अगर पर्चियां गिनना चालू कर दोगे तो लोगों का संदेह अपने आप समाप्त हो जाएगा, और जब संदेह समाप्त हो जाएगा उसके बाद में फिर आप कर सकते हो। लेकिन अभी तो जो भाषण है मोदी जी का, वो संदेह पैदा करता है पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर के। विशेष तौर पर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि चुनाव आयोग का जो एक प्रक्रिया थी, सिलेक्शन प्रोसेस थी चुनाव आयुक्त की, उसको सरकार ने बदल दिया कानून ला करके, और उसके अंदर उन्होंने ये प्रावधान कर दिया कि भाई जो है मतलब सीजीआई नहीं रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, मंत्री रहेगा। तो दुनिया जानती है कि मंत्री जिस सरकार का होगा, जिस पार्टी का होगा, उसके लिए काम करेगा। अब इसका मतलब ये है कि आप चुनाव आयुक्त को अपनी पार्टी का एक तरीके से कठपुतली के तौर पर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हो, जो लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद है। तो इसलिए हमारा कहना यह है कि प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरीके के दावे किए हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो ईवीएम के माध्यम से कोई बहुत बड़ा मैनिपुलेशन की तैयारी कर ली गई है, और इसलिए वीवीपीएटी के पैड की पूरी गिनती करना 100% जरूरी हो गया है, ये मैं कहना चाहता हूँ।
डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने ईवीएम के संबंध में भी अपनी बात रखी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस लोकतंत्र में सबसे बेहतर ईवीएम है या बैलेट पेपर?
देखिए, जहां पर ईवीएम का इजाद हुआ मशीन का, वो सब बैलेट पेपर के ऊपर चल रहे हैं, केवल और केवल इसलिए कि वहां के लोगों ने भी शंका व्यक्त की थी, जैसे कि भारत के नागरिक या भारत के मतदाता शंका व्यक्त कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने उस प्रक्रिया को छोड़ दिया, क्योंकि लोकतंत्र में भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है, विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर लोगों को विश्वास है तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए।
डॉक्टर साहब, जैसा कि विगत कई वर्षों से ईवीएम का विरोध हो रहा है, और उसके बावजूद भी सरकार ईवीएम पर ही भरोसा जता रही है, इसके पीछे क्या कारण है?
आपको मालूम है कि पहले एक उनके अभी भी सांसद हैं वो, है ना, भाजपा के, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका प्रीफेस लिखा था अडवाणी जी ने, और उन्होंने ईवीएम को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। अब वही लोग टिक गए हैं। दिक्कत ये है कि इसमें जो है जो लोग विरोध इसका कर रहे हैं, वो लोग ये तो मतलब आशंकित रहते हैं कि ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जब कर्नाटक में जीत जाते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि अरे भाई देखो अपोजिशन है उसकी सरकार वहां बन गई। दिल्ली के अंदर चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं कि भाई देखो उनकी सरकार वहां पे बन गई तो ईवीएम के ऊपर तो भरोसा करना चाहिए। तो इसलिए हमारा कहना एकदम साफ साफ ये है कि ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। हम एक आंदोलन चलाते हैं जिसका है ईवीएम हटाओ देश बचाओ, उसमें 22 पार्टियां आई, उसका एक सम्मेलन हमने किया राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में। सब पार्टियों ने कहा कि हटना चाहिए, और जब हमने कहा कि भाई ठीक है अगर मान लो मोदी सरकार नहीं हटाती तो क्या आप चुनाव का बहिष्कार करने के लिए तैयार हो, तो एक भी पार्टी तैयार नहीं हुई। उनका कहना यह है कि भाई डॉक्टर सुनीलम अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये ऐसी फर्जी पार्टियां जो बनी हुई हैं, मतलब हजारों में पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, अपने ही लोगों को लड़ा करके ये चुनाव करवा देंगे, बताएंगे कि मल्टी पार्टी सिस्टम काम कर रहा है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं जो आपके दर्शकों के या आपके जो श्रोता है उनके सामने रखना चाहता हूं।
डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में संसद में देश के गृह मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि विपक्ष रेवड़ियां बांटता है, तो जो देश की जनता को जो शासन की योजनाओं के साथ मिलता क्या वो रेवड़ियां के इसमें गिनती में आता है?
सवाल ही पैदा नहीं होता। रेवड़ियां जो है, रेवड़ी बांटने का जो अभिप्राय होता है वो ये है कि मुफ्तखोरी है। हमारा कहना यह है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, और कल्याणकारी राज्य किसके लिए है? भारत की जनता के लिए है, जिससे कि संविधान में हम भारत के लोग कहा गया है। तो अब सवाल ये है कि हम भारत के लोग जो है उनका राष्ट्रीय ग्रंथ भारत का संविधान है, वो संविधान ये कहता है कि हर नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। तो अब जब सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है तो हवा से तो नहीं होगा, पानी से तो नहीं होगा, उसके लिए तो रोजगार चाहिए पड़ेगा। तो अब स्थिति इस तरीके की है कि भाई आप जो है उसका इंतजाम कर नहीं रहे हो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं का, और अगर कोई पार्टियां या सरकारें अगर इंतजाम करते हो तो आप कहते हो कि रेवड़ी बांटी जा रही है। और ये जो 10 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ किया अडानी अंबानी का, तो उसे क्या कहेंगे? वो रेवड़ी है या वो छूट है या वो हिंदुस्तान के अंदर पसीना बहाने वाले लोगों का जो टैक्स का पैसा है उसकी लूट है, क्या कहा जाएगा उसको? तो मुझे लगता है कि रेवड़ियों वाली जो पूरी बहस है ये बेकार की बहस है। देश के नागरिकों का अधिकार है कि कल्याणकारी योजनाओं को का उनके लिए बनाई जाए और उससे वो लाभान्वित हो, ताकि वो सम्मान पूर्वक जीवन जीने का काम कर सके, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करना भारत के हर नागरिक का अधिकार है।
डॉक्टर साहब, जैसा कि गृह मंत्री जी ने ये आरोप विपक्ष पर लगाया था, लेकिन मध्य प्रदेश में देखने में आ रहा है कि यहाँ पर लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश शासन ने चलाई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में और केंद्र में एक ही राजनीतिक दल की सत्ता है, तो यह योजना भी क्या रेवड़िया में शामिल हो जाएगी?
देखिए, योजना तो ये कुल मिलाकर के लोगों को ठगने की योजना है। इन्होंने कहा कि लाडली बहना में हम सब महिलाओं को देंगे। मेरे यहाँ पर परमंडल जो मेरा गांव है वहाँ पे 1200 महिलाएं हैं, उसमें 470 महिलाओं को मिल रहा है। मैंने सरपंच से, सचिव से, ग्राम सभा की मीटिंग के अंदर पूछा कि बाकी को क्यों नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा जी योजना ऐसी है कि 21 से कम को वाले को नहीं मिलेगा और 60 से ज्यादा वाले को नहीं मिलेगा। तो 50% लोगों को, अब आप देखिए ना, 1200 में से 470 तो कितनी महिलाएं छूट गई। तो आप तो दावा सब महिलाओं को 1000 रुपए देने का कर रहे, अब 1200 रुपए देने का कर रहे। कांग्रेस पार्टी फार्म भरा रही 1500 रुपए के, तो अब आप कह रहे कि हम 3000 देंगे। तो मजाक की बात है ना, लोगों को आप जो है एक तरीके से ठगने का काम कर रहे हो। जो आपने कहा था आय दुगनी करेंगे किसानों की, वो दुगनी नहीं हुई। आपने कहा था MSP देंगे, वो देने का काम नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा था कि भाई हम जो है 6000 रुपए साल प्रधानमंत्री सम्मान निधि देंगे, वो भी नहीं मिली लोगों को, एक भी किसान को नहीं मिली 30000 रुपए। आपका जहाँ भी मोबाइल वाणी सुनते हो उनसे एक बार सर्वे करके पूछ लीजिए किसको मिला है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि, पहले कहा कि 6000 रुपए देंगे, किसानों को फिर कहा 10,000 रुपए देंगे, अभी तक तो वो मिला नहीं, ये सवाल है।
डॉक्टर साहब, हम आपसे एक अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे। अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न होना है, और विधानसभा के जब चुनाव संपन्न होना है तो यहाँ विविध पार्टियां अपनी अलग अलग तरह से घोषणा पत्र जारी करेंगी, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए दिन नई नई घोषणाएं कर रहे। अभी हाल ही में उन्होंने 64 के धरती पर पांडुना को जिला बनाने की घोषणा की है, तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, अब जिला तो बनना था मुल्ताई को, अब उन्होंने पांडुना को जिला बनाने की बात की, तो कुल मिलाकर के वो छिंदवाड़ा जिले को बांटना चाहते हैं, छिंदवाड़ा जिले की ताकत को जो है वो कमजोर करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो बांटो और राज करो का पॉलिसी के अंदर इनका विश्वास है। तो पांडुना जिला बने उसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो नियत है, आपकी जो मंशा है, वो छिंदवाड़ा जो है, क्योंकि वो आइडेंटिफाइड है जो है कमलनाथ जी के साथ में आइडेंटिफाइड है, लगातार वो वहां से वो चुनाव जीतने का काम करते रहे हैं, लोग भी कहते हैं कि इस बार भी वहां पर जो है भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी, ये सब बातें चल रही है। तब आप कुछ ना कुछ तिकलम कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि तिकलम की जरूरत नहीं थी। अभी पहले 50 थे जिले या 55 हो गए, अब ये चुनाव के लिए क्या क्या करेंगे? इन्होंने 3 मंत्री अभी बना दिए, आपने देखा है ना
जी।
अब पहले आपका जो कार्यकर्ता है, विधायक का प्रतिनिधि है, वो जो है वो एक आदिवासी पर पेशाब कर देता है, फिर उसको लेकर के पूरे आदिवासी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और फिर जो है आपको घर तोड़ने का आदेश देना पड़ता है, तो आप जो है बुलडोजर से उसका शुक्रा का घर तोड़वाते हैं, फिर ब्राह्मण इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जी गलत हो गया, पैसे इकट्ठा करते उसका घर बनवा देते हैं, ब्राह्मण नाराज हो जाता है, इसलिए आप राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बना देते हैं। उमा भारती कहती है कि शराबबंदी लागू होनी चाहिए और दराब में जो है पत्थर से तोड़ दूंगी, उनके भतीजे को आप बना देते हो। यहाँ पर आपको मालूम है गौरी, आपके जो है भीसेन जो है ना, गौरी शंकर चतुर्भुज भीसेन, अब इनकी आय की संपत्ति का मामला, आय से अधिक संपत्ति का केस इनके ऊपर चल रहा है। इन्होंने कहा था कि मैं रिश्तेदार भेज करके छिंदवाड़ा को बर्बाद कर दूंगा, वो बिजली विभाग वाला, वो इनके ऊपर चल रहा है। कुछ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार वाला एक इनका वो था, वो इनके ऊपर चल रहा है। इनकी जो है वो खुद का कास्ट जो है, इनका जो है जाति प्रमाण पत्र संदिग्ध है, उसका इनके ऊपर केस चल रहा है। वैसे लोगों को आप मंत्री बना रहे हैं, आप सोचिए। तो मेरा मतलब ये है कि सरकार घबराई हुई है, सरकार डरी हुई है, तो उसके अंदर वो जिले भी बना दे रही है ना, वो मंत्री भी बना दे रही है, क्या क्या करेंगे मालूम नहीं। आपके यहाँ तो मैंने देखा, मैं जो है आपके यहाँ पर पात्रगढ़ भी गया था, एक किसान सम्मेलन था संयुक्त किसान मोर्चे का, तो मैंने वहां पर देखा कि एक तरफ जो है वो बजरंग बली की मूर्ति बनी हुई है ना, बड़ी भारी कमलनाथ जी ने बनवाई, दूसरी तरफ जो है भाजपा के लोग शंकर जी की मूर्ति। तो ये देश में मतलब इंसानों के बारे में सोचा जाएगा, नागरिकों के बारे में सोचा जाएगा, 50% बच्चे जो कुपोषित हैं, 60% महिलाएं जिनको खून की कमी है, एनीमिक है, उनके बारे में सोचा जाएगा, या पैसा मूर्तियों में लगाया जाएगा?
जैसा कि डॉक्टर साहब अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कुपोषण की, और मध्य प्रदेश में कुपोषण के रिकॉर्ड में कुछ और ऐसे कुछ और दिखाई देता है, तो जो महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से जो योजनाएं चलती है, क्या वो जमीनी स्तर पर आपको दिखाई दे रही है?
देखिए, कुल मिलाकर के असल में ये जो है भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने 245 जो है घोटालों की सूची जारी की है। अब अगर वो घोटाले गलत हैं, तो आप लगा दो मानहानि का केस, लगा दो आप जो है FIR करवा दो, आप कार्रवाई करो, तो वो तो है नहीं। तो सब घोटाले जो हैं, तो एक घोटाला संस्कृति बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, जो राज करने की संस्कृति है वो घोटाला संस्कृति है। तो जब घोटाला होगा तो वो आंगनवाड़ी के अंदर भी होगा, वो ड्रेस यूनिफॉर्म खरीदने के अंदर भी होगा, वो छात्रवृत्ति देने के अंदर भी होगा, वो पेंशन देने के अंदर भी होगा, वो सब तरफ होगा। तो अकेला मामला माल महिला बाल विकास का नहीं है, तो पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका कि आपने मोबाइल वाणी के माध्यम से देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, देश ही नहीं तो राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय साझा की, इसके लिए मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।
मोबाइल वाणी का भी बहुत धन्यवाद कि आपका प्रयास, इतना मेहनत आप करते हैं और जो है तमाम लोगों के विचार जो है आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप सही पत्रकारिता और सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
धन्यवाद।